श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 22। सबने निकाल लिया नहीं? सबने भी निकाला? फिर से संख्या 382 है, सब लोग खोलिए। क्या देर लग रही है? 382 पृष्ठ संख्या
पेज 382
श्लोक संख्या 22 चलिए सबको। वैसे तो इसमें श्वेत पट में भी लिखा हुआ है छत्रम छयाय विदिनो प्रकृतम महात्मा पतम नरकातिलिप्सो उद्धन्त सावन कंटक मोक्षिया और धीरे धीरे पढ़ो, बड़े ध्यान से देखिए। छत्रम छयाय विदिनो प्रथितम महात्मा ब्रह्म द्रुमुज्जत पथम नरकातिलिप्सो उद्धन्त सागवन कंटक मोक्षगिरिय छत्रम छयाय विदिनो प्रथितम महात्मा ब्रह्म द्रुमुज्जत पथम नरकातिलिप्सो उधार पर
छत्रम छयाय विदिनोपभृतम महात्मात पथम नरकातिलिप्सो
छत्रम क्षयाय विदिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म द्रुमुज्जत पथम नरकातिलिप्सो उद्धन्त सावनिकंटकम् उग्रवीर्य सप्तकृत गुरु धार प्रश्वधेन
वैष्णव देवी
सत्रम
क्षत्रम राजवंश क्षयाय घटाने के लिए विधिना वैरवश उपभृतम बड़े हुए महात्मा महान ऋषि परशुराम के रूप में भगवान ब्रह्म ध्रुव ब्रह्म का अंतिम सत्य उच्चित पतन जिन्होंने परम सत्य के मार्ग को त्याग दिया है नरक आरती लिप्सु नरक की यातना के पात्र उद्धान्ति बाध्य करते हैं असौ वे सब अवनिकंतक संसार के कांटे उग्रवीर्यः महापराक्रमी इक्कीस बार कृत्वः संपन्न पुरुधार अत्यंत तीक्ष्ण परस्वधेन विशाल फरसे से अनुवाद मेरे पीछे बोलिए जो शासक वर्ग समागम जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फर से के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले आप लोग इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे तो या तो श्वेत पट में लिखा हुआ है उसको देखें या फिर आपके पास जो कागज है उसमें देखें। सबसे पहले शब्द क्या है छत्रम ना, ठीक है। तो छत्रम का मतलब क्या है क्षत्रिय वंश राजाओं का वंश छत्रम फिर क्या है छयाय छयाय का मतलब क्षय करने के लिए नाश करने के लिए छत्रम छयाय का मतलब क्षत्रियों का नाश करने के लिए है ना। तो ये जो श्लोक है ये कौन बोल रहे हैं किसी को पता है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं नारद जी को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी नारद जी से भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी से परशुराम जी के अवतार का वर्णन कर रहे हैं है ना। तो परशुराम जी का अवतार क्या हुआ छत्रम छयाय है ना क्षत्रियों का विनाश करने के लिए है ना। विधिना उपभृतम का मतलब है कि विधि के द्वारा वे उनको उपहार स्वरूप में प्राप्त हुए छयाय माने मृत्यु के लिए मारने के लिए। तो देव ने या भाग्य ने उनको जो है समर्पित कर दिया परशुराम जी के पास समर्पित कर दिया छयाय मतलब नष्ट करने के लिए देव उनके पास ले आया भाग्य दुर्भाग्य उनका परशुराम जी के पास ले आया है ना। विधिना उपभृतम महात्मा किसके लिए है शब्द या परशुराम जी के लिए महात्मा ब्रह्म ध्रुव उच्छित पतम ब्रह्म ध्रुव का मतलब है ब्राह्मणों के द्रोही उच्छित पतम जिन्होंने अपना वेद मार्ग त्याग दिया है ब्राह्मणों से द्रोह करके अपना सही रास्ता त्याग दिया है उज्जित प्रथम है। नरक आरती लिप्सु नरक की यातनाएं लिप्सु माने पाना चाहते थे इसका मतलब नरक की यातनाएं पाना चाहते थे नरकाग्र लिप्सु उद्धंती, उद्धंती का मतलब है कि नष्ट करते हैं, उद्धंती माने नष्ट करते हैं, उत्पाटयति उद्धंती नष्ट करते हैं, किस क्रिया है परशुराम जी के लिए, परशुराम जी नष्ट करते हैं, उद्धंती असौ, असौ माने ये मतलब परशुराम जी के अवतार, असौ अवनी कंटकम, अवनी का मतलब पृथ्वी, कंटकम पृथ्वी के कंटक, पृथ्वी के कंटक कौन है, ये दुष्ट क्षत्रिय है ना जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, दुष्ट क्षत्रिय है पृथ्वी के कंटक है, अवनी कंटकम उग्रवीर्यः, उग्रवीर्यः जिनका पराक्रम बहुत उग्र है, उग्र पराक्रम वाले है ना, भयानक पराक्रम वाले उग्रवीर्यः, किसके लिए आया परशुराम जी के लिए आया, उग्रवीर्यः त्रिसप्त कृत्वा, त्रिसप्त का मतलब तीन बार सात कितना हुआ 21, त्रिसप्त कृत्वा तीन मतलब 21 बार उरुधार परस्वतेन, उरुधार का मतलब है तीखी धार वाले, परस्वतेन फरसे के द्वारा तो तीक्ष्ण धार वाले फरसे के द्वारा 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया, और क्यों विनाश किया, क्योंकि ब्राह्मणों के द्रोही हैं, ब्रह्म ध्रुव उच्छेद पदम है ना, तो ब्रह्म ध्रुव का मतलब ब्राह्मणों के द्रोही, एक प्रभुपाद ने शब्दार्थ में जो अनुवाद किया है ब्रह्म ध्रुव का मतलब है ब्रह्म माने अंतिम सत्य, ब्रह्म का दूसरा अर्थ अंतिम सत्य है, यानी भगवान के आदेश, भगवान के आदेश से द्रोह करने वाले, तो एक दूसरा अर्थ भी है कि भगवान के आदेश से द्रोह करने वाले ये ब्राह्मण थे, इसलिए प्रभुपाद जो है शब्दार्थ में और अनुवाद में इसी प्रकार का अर्थ निकाल रहे हैं, अनुवाद में भी प्रभुपाद परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तो इस तरह से प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की ब्रह्मांड के किसी भी भाग में चाहे वो इस ग्रह में हो या अन्य ग्रहों में शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि परशुराम जी का जो अवतार हुआ था ये इन क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हुआ था, क्यों क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हुआ था, क्योंकि ये क्षत्रिय जो है इनका कार्य असल में जो कार्य होता है भगवान के तरफ प्रजा को मोड़ने के लिए होता है, जो अज्ञानी जनता है तो उस अज्ञानी जनता को भगवान के चरणों की तरफ मोड़े, शासकों का ही कार्य है, लेकिन जब प्रशासक इस कार्य को छोड़ देते हैं ना तो स्वयं भगवान की तरफ मुड़ते हैं ना प्रजा को भगवान की तरफ लगाते हैं तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र हो या तानाशाही हो या लोकतंत्र हो, लोकतंत्र मेरे ख्याल से ये इस समय चल रहा है प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही मतलब है ना, एक ही मतलब, लोकतंत्र हो प्रजातंत्र या लोकतंत्र हो या तानाशाही हो या राजतंत्र, राजतंत्र प्राचीन काल में राजा होते थे, राजतंत्र होता है ना, तो उनका मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है, चाहे कोई भी प्रशासन है ना, इस समय जो है प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में भी शासन तो है, एक ही शासन है ना, और शासन जो है क्षत्रियों का ही होता है, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे कोई भी हो है ना, जो प्रशासक होते हैं वो क्षत्रिय, क्षत्रियों का कार्य है प्रशासन करना होता है, तो प्रभुपाद ये लिखते हैं कि चाहे कोई भी शासन हो किसी प्रकार का प्रशासन हो, लेकिन इन प्रशासन का मुख्य कर्तव्य क्या है, प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, कितनी कठिनाई से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ये अज्ञान में जनता जो है इस बात को नहीं जानती, तो प्रशासन का क्या कर्तव्य है, कि नियम ऐसे लागू करें जो भगवान के बनाए नियम है और इनका पालन करना पड़ेगा। ये जो है एक भय भी भय पैदा करना चाहिए जनता में, प्रशासन की ओर से यह भय पैदा करना चाहिए कि भगवान के आदेश के विरुद्ध कोई कार्य ना करे और भगवान के आदेश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे। ये जो है मतलब कठोर जो कानून है, ये सरकार के कानून ऐसे कठोर होने चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको दंड दें और भगवान के आदेश के अनुसार कोई कार्य करे तो उसको सुविधा दें। ये सरकार का कर्तव्य है, चाहे कोई सरकार हो, प्रजातंत्र सरकार हो या राजतंत्र सरकार हो कोई। आगे प्रभु लिखते हैं, ये सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है और पिता गुरु और अंततः राज्य का ये कर्तव्य है कि प्रजा को ईश्वर ले जाएं। तो तीनों के पिता का भी कर्तव्य है, नहीं तो पिता नहीं बनना चाहिए। अपने पुत्रों को, अपने संतान को अगर भगवान के आदेश के अनुसार अगर नहीं चला सकते तो पिता ना बने, वो पिता नहीं चलाएगा। या गुरु शिष्य को जो है अगर भगवान के आदेश अनुसार ना चलाए तो गुरु ना बने। या राजा प्रशासक प्रशासन ना बने। आगे प्रभु लिखते हैं, भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य से हुआ है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो परम पिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए हैं। तो जितने भी जीव हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा बंधे हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी से बंधे हैं जितने जीव है ना, तो इनमें से जिनको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान के आदेश के अनुसार चलाया जाए ताकि प्रकृति के नियमों से छूट सकें। आगे भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है तो स्वतः लोग जो है नरक की ओर जा रहे हैं। अगर भगवान के आदेश का पालन ना करें तो स्वतः लोग कहाँ जाएंगे, नरक नरक की ओर जाएंगे, है ना। नरकार्ति लिप्सो, जो श्लोक में कहा है नरकार्ति लिप्सो। आगे जो वृद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वे ब्रह्मोचित पथ कहलाते हैं। ब्रह्म का मतलब भगवान का आदेश, उचित का मतलब हट गए पथ, जिनका रास्ता जो है भगवान के आदेश से भटक गया है, ब्रह्म उचित पथ कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार हैं ऐसी ही सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाति राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासक गण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है, यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। प्रभुपाद का तात्पर्य जो है बहुत ही स्पष्ट, ये सर्वशक्तिमान भगवान की व्यवस्था है कि प्रशासक जो है अगर इस तरह से हो जाएंगे तो उनको जो है भगवान की ओर से दंड मिलेगा और भगवान का कोई अवतार होगा जो कि इन राजाओं को जो है दंड देगा। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, तो अब देखिए इसमें शब्द कैसे हैं। इस श्लोक का हिंदी में पद्य अनुवाद किया है एक विष्णुप्रिया देवी हैं, उसका उनके जो पंक्तियां हैं इसको आप सुनिए। दैववश क्षत्रिय जब मर्यादा को उलांघ दें, ब्राह्मण तो ही बन इस जग में अपने नाश की ओर बढ़ें। पृथ्वी पर जीवों के लिए वे कंटक जब बन जाएं, तब श्री हरि महापराक्रमी परशुराम बनकर आए। अपने तीखे फरसे से वे क्षत्रियों का संहार करें, एक बार पर्याप्त नहीं वे ऐसा 21 बार करें। एक बार पर्याप्त नहीं ऐसा 21 बार करें। तो इसमें एक शब्द आता है उद्धंती, उद्धंती का मतलब है कि संहार करते हैं, तो इस पर विचार करिए कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि परशुराम के रूप में भगवान क्षत्रियों का संहार करते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? परशुराम जी का अवतार एक बार हुआ और ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को बताया भगवान के अवतार के बारे में, तो अगर सृष्टि का प्रारंभ काल है, सृष्टि के प्रारंभ में, तो परशुराम जी का अवतार तो हुआ ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो धंती यानी शक्तियों का संहार करते हैं, तो वर्तमान काल में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो इस पर विचार करना चाहिए। ब्रह्मा जी हाँ, क्योंकि प्रत्येक कल्प में ऐसा होता है, तो भगवान जो है परशुराम जी का अवतार लेकर के क्षत्रियों का संहार करते हैं, तो ये जो है ब्रह्मा जी जो वर्तमान काल में बता रहे हैं इसका अर्थ यही है। और प्रभुपाद तात्पर्य फिर यही बता रहे हैं कि व्यवस्था है भगवान कि जब भी ऐसा होगा, है ना, इसलिए जब शासक वर्ग परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो जाते हैं तो भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। तो धंती का मतलब ये है और ब्रह्म ध्रुव का मतलब एक तो ब्राह्मण के द्रोही, लेकिन प्रभुपाद ने ब्राह्मणों के द्रोही ये अर्थ ना करके प्रभुपाद ने क्या अर्थ किया है, वेद मार्ग से जो भ्रष्ट हो गए, वेद का मार्ग त्याग दिया, है ना। तो इसमें एक कारण है, प्रभुपाद के जो अर्थ हैं अनुवाद तात्पर्य बड़े गहरे हैं, क्योंकि तो प्रभुपाद वर्तमान काल की स्थिति पर विचार करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कुछ अर्थ को जो है दूसरे प्रकार से निकालते हैं, है ना, क्योंकि इस समय की शिक्षा के अनुसार इस समय कैसे लोगों को शिक्षा दी जाए, है ना, क्योंकि इस समय क्या है, लोग अपने को ब्राह्मण दावा करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, किस आधार पर, कि हम जन्म के आधार, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, है ना। आप सुन रहे, आजकल जो है कोई भी व्यक्ति अपने को ब्राह्मण होने का दावा करता है, क्यों दावा करता है, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ, है ना। अगर आप कुछ मतलब आनाकानी करते हैं तो अपना जनेऊ दिखाता है, देख जनेऊ, एक जनेऊ देख, है ना। तो एक बार रोहिणी में जो है मेरा प्रवचन हुआ था, तो रात में जो है काफ़ी लेट, करीब ठंड का समय था, और रात में 9 बजे तो काफ़ी रात हो जाती है, ठंड के दिनों में बहुत रात हो जाती है, और थ्री व्हीलर खुली गाड़ी थी, 3 पहिए वाली गाड़ी, तो उसमें जो है किस प्लान ड्राइवर था, तो चला रहा था गाड़ी, तो एक शराबी था और वो अपनी साइकिल को जो है वो पीछे से पकड़े था और सड़क के बीच में करके मतलब हमारी गाड़ी के आगे आगे कर रहा था, तो गाड़ी जहाँ से निकले अपनी साइकिल को आगे कर रहा था ना, कि मतलब ये मारे मेरी साइकिल में और फिर मैं इसको जो है मतलब पैसा दूंगा, इससे पैसा वसूल करूँगा, तो पैसा देना चाहता था इसकी साइकिल को, अपनी रक्षा करते अपने अपने को बचाव करते हुए कि मुझे चोट ना लगे और साइकिल को चोट लगे, तो ऐसे कर रहा है ऐसे, है ना। तो उसकी साइकिल में लगी गई और जब लग गई बोले देख तूने मेरी साइकिल जो है तोड़ दी है, पैसा निकाल, है ना। तो उसने कहा भाई साइकिल तो साइकिल में कुछ नहीं हुआ, साइकिल चला के दिखाई ड्राइवर ने, साइकिल में तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो फिर जो है और बहस करने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण है तू मुझे पैसा दे। ड्राइवर बोला कि भाई हमारे पास पैसा तो होता नहीं है, ये मालिक हैं, मेरी तरफ कहा ये मालिक हैं, ये पैसा देंगे हमें तब मैं पैसा दूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, है ना। अच्छा लेकिन निकाल 50 रुपये निकाल, ऐसे ऐसे करें, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं जनेऊ दिखाया देख मैं ब्राह्मण हूँ, और शराब पिए था वो तो ये हाल है कि कोई व्यक्ति जो है अपने ब्राह्मण होने का दावा करता है, ब्राह्मण कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूँ इसलिए, या मेरे पास जनेऊ, तो जनेऊ कितने का आता है, 5 रुपये का, 5 रुपये जनेऊ आता है, तो 5 रुपये जनेऊ धारण करके कोई व्यक्ति ब्राह्मण होने का दावा करता है। तो प्रभुपाद ने इसलिए ब्रह्म ध्रुव इन ब्राह्मणों के द्रोही ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद के आधार पर वे ब्राह्मण लोग जो है बड़े अपने को अपना अपने नाक ऊपर उठाएंगे, देखो हमसे द्रोही कोई करेगा तो परशुराम जी जो है उनको दंड देते हैं, हम हैं ब्राह्मण, हम हैं ब्राह्मण। तो इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत सावधान है। ये प्रभुपाद ने जो है ये सब जो अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ जो भी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए, इसलिए बहुत धीरे धीरे डिक्टा फोन पर बोलते हैं। प्रभुपाद ने जो है डिक्टा फोन पर बोले हैं शब्दार्थ अनुवाद, और किसी भक्त ने पूछा कि आप इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं, मतलब रुक रुक करके। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यही जो है आगे चल करके टाइप होंगे और फिर पुस्तक के रूप में छपेंगे। तो ये मानव समाज का 10,000 साल तक ये पथ प्रदर्शन करने वाले ग्रंथ हैं, इसलिए मैं बहुत सोच सोच करके और रुक रुक करके बोलता हूँ। तो प्रभुपाद ने जो है शब्दार्थ भी और अनुवाद भी और तात्पर्य भी बहुत रुक रुक करके बोले, इसमें बहुत टाइम लगा। तो प्रभुपाद ने बहुत टाइम दिया और रात में जाग जाग करके, और दिन भर जो है उनका प्रचार का कार्य चलता था, भक्तों से मिलना और कार्यक्रम करना और भक्तों को प्रशिक्षण देना, ना कितना उन्होंने कार्य किया। और रात में जो है टिकटा फोन पर बैठ करके बोलते, तो उसमें इतना रुक रुक करके बोलते कि जल्दी नहीं कि जल्दी से निकालो, खत्म करो जल्दी, ये नहीं है ना। इसलिए प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पूरा नहीं कर पाए, 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक कर पाए है ना, तो काफी छूट गया। फिर उनके शिष्यों ने किया पूरा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद इतना मतलब ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर गहराई देखा जाए तो प्रभुपाद का जो है मतलब जो भाव है वो कितना गहरा है। इसलिए ब्रह्मध्रुव वास्तव में तो परशुराम जी ने जो है क्षत्रियों का संहार किया था, क्योंकि उनके पिता से जो है द्रोह किया था, और उनके पिता जो है मतलब बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे हैं। लेकिन आजकल जो के जो ब्राह्मण है वो अपने उन गुणों को नहीं देखते कि उनके अंदर वो गुण है कि नहीं है, वो योग्यता है कि नहीं है, बल्कि ब्राह्मण उन्हें दावा करते हैं, देखो ब्राह्मण का इतना प्रभाव है ना। ब्राह्मण ने भगवान के छाते में लात मारी और भगवान ने जो है उनकी इज्जत करी, हम वो ब्राह्मण जो है भगवान की, हाँ तो भगवान ने जो है भगवान की छाते में लात मारी, तो हम तो वो ब्राह्मण हैं है ना। तो हम चाहे जो कुछ भी करें, हम जितना अन्याय करें तुम सहन करो, हम तुम्हारी छाती में लात मारते रहे, तुम्हारे सिर में लात मारते रहे, और तुम सहन करो, हम ब्राह्मण हैं और तुम ब्राह्मण कभी नहीं बन सकते चाहे जितनी योग्यता आ जाए, है ना। तो ये समस्या है ना। इसलिए प्रभुपाद ने कितना गहरा सोचा, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी लिखते ब्राह्मण द्रोही तो फिर एक अलग सी चैप्टर उनको एक और शुरू करना पड़ता कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का अर्थ क्या है। इसलिए प्रभुपाद ने इस विषय को ना लेकर के वो ब्रह्म का मतलब वैदिक आदेश भगवान के आदेश ये कर दिया है ना। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद की जो है मतलब कितनी गहराई है, कि प्रभुपाद मतलब कोई भी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जिस शब्द के द्वारा कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाए है? और कुछ का कुछ समझ ले है? और पहले से ही गलत निष्कर्ष निकाले बैठे हैं लोग है ना। तो प्रभुपाद नहीं चाह रहे कि किसी को प्रोत्साहन मिले कि वो इस तरह के गलत निष्कर्ष निकाले, इसके ब्रह्मध्रुव का अर्थ जो है प्रभुपाद ने ये किया है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमें समझना है कि वो जो है जो पवित्र चरित्र है, जिनका पवित्र आचरण है, जिनके पास जो है ब्राह्मणों की योग्यता है, जो भगवान ने गीता में बताई है 9 गुण है ब्राह्मण के, समो दमस्तपः सोजम शांति राजम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के है ना। तो ये जो है मतलब है ब्राह्मणों का कर्म है ना। तो इसमें जो कथा आती है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आती है, 9वें स्कंद में परशुराम जी के अवतार की यह कथा आती है। तो उसमें बताया गया है कि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम जी, जमदग्नि के कई पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम जी है ना। तो एक बार आश्रम में जब परशुराम जी नहीं थे, उस समय वन में जमदग्नि मुनि का आश्रम था और सहस्रबाहु अर्जुन जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो राजा जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो अपनी सेना के साथ जो है वन में आया था शिकार खेलने के लिए। बहुत सेना थी, घोड़े हाथी और पैदल और रथ, बहुत मतलब विशाल सेना थी। कितनी सेना थी? 17 अक्षौणी सेना थी, 17 अक्षौणी सेना थी। सोचिए 17 क्षण कितनी सेना है, 18 क्षण सेना कौरव पांडवों की मिला करके थी महाभारत में, और 17 क्षण सेना उसकी थी किसकी, हाँ सहस्त्रबाहु अर्जुन की 17 क्षण सेना थी ना। जब आश्रम में आया वो तो जमदग्नि मुनि के पास जो होम धेनु गाय थी या काम धेनु गाय गए उनके पास जो है होम धेनु गाय थी, तो उससे वे अपने भोग के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त करते, कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त करते थे, वो तो गाय से घी प्राप्त करते थे और यज्ञ की जो भी सामग्री है वो प्राप्त करते थे और यज्ञ करते थे। ब्राह्मण का जो है मतलब कितना त्याग होता है, कितना उसका जीवन जो है त्याग पूर्ण होता है कि भोग की सब सुविधाएं, क्योंकि गाय हर प्रकार के भोग प्रदान कर सकती है, इंद्रिय तृप्ति की सब सुविधाएं दे सकती है ना, लेकिन उस गाय से वो केवल हवन की सामग्रियां ही प्राप्त करते थे जो कुछ भी चाहिए, और हवन करते थे और अपने तपस्या में लगे थे ना। लेकिन जब राजा आए तो उन्होंने सोचा कि राजा के लिए तो भाई सब प्रकार के भोग की सुविधाएं होनी चाहिए, तो उस गाय के द्वारा उन्होंने जो है बड़े बड़े महल बना दिए, राजा के रहने के लिए और सेना के रहने के लिए बड़े बड़े महल बन गए और बहुत से सेवक बन गए, सैया आसन और कितने प्रकार के जो है भोग की सामग्रियां, 56 प्रकार के व्यंजन, क्या क्या व्यंजन सब जो है गाय से उन्होंने प्रकट कर दिए, खिलाया पिलाया सुलाया सब कुछ किया। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है इतना घमंडी था कि उसने मतलब इनका गुण नहीं माना कि जमदग्नि मुनि का कितना ये गुण है कि वे अपने लिए तो कुछ भी नहीं, गाय से अपने लिए कुछ भी भोग नहीं प्राप्त करते हैं और मेरे लिए इतना उन्होंने भोग दिए, तो इनका कितना त्याग है, इनके कितने गुण है, है ना। तो उसको मतलब मतलब प्रभावित होना चाहिए कि जमदग्नि के कितने गुण हैं, लेकिन प्रभावित होने के बजाय उसने ईर्ष्या की, उसने द्वेष किया कि इनके पास नहीं होना चाहिए गाय, ये गाय तो हम राजाओं के पास होनी चाहिए, हम भोगी हैं, हम हमारे भोग के लिए ये गाय, और जमदग्नि मुनि से बिना पूछे गाय को ले लिया और चलते बने। कितना मतलब ये दुष्ट व्यवहार, कितनी दुष्टता है। उनको ना तो धन्यवाद दिया, हाँ उनसे सब सत्कार प्राप्त कर लिया और गाय को भी लेकर के, और गाय जो है बेचारी रो रही है बछड़े के साथ जो है खोल करके और चलते बने, कितने दुष्ट। जब परशुराम जी आए और जमदग्नि अपनी तपस्या से भी जो है उनको नष्ट कर सकते थे, लेकिन जमदग्नि ने जो है ब्राह्मण का यही स्वभाव है कि वो सहन करे, शांति, 9 ब्राह्मणों के जो स्वाभाविक कर्म है उनमें से एक शांति ही है, सहनशीलता। तो अब कोई अन्याय करता है तो सहन करता है ब्राह्मण, तो उन्होंने सहन किया। लेकिन जब परशुराम जी आए, देखा कि आश्रम सोना है, गाय नहीं है, और जब पूछा तो उनको सब कुछ पता चला, इतना दुष्ट, तो उन्होंने अपना जो है फरसा उठाया और दौड़े, तो रास्ते में उसको जो है दिखाई दिया, तो जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था तो उसने अपनी पूरी सेना को जो है परशुराम जी के आगे कर दिया, युद्ध करने के लिए कर दिया, और इन्होंने जो है इतनी तेजी से अपने फरसे से जो है विनाश करना शुरू कर दिया, 17 छोड़ी सेना मार डाली उसने अकेले परशुराम। क्यों? शक्त्याभिशप्ता, ये शक्ति का आवेश है, परशुराम जी विष्णु तत्व नहीं है, परशुराम जी विष्णु तत्व नहीं है, परशुराम जी एक जीव तत्व हमारी तरह, लेकिन भगवान की कोई विशेष शक्ति यहाँ पर विनाशकारी शक्ति या युद्ध करने की शक्ति ये जो है आविष्ट हो गई उनके ऊपर, तो जो है उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, तो 17 क्षण सेना का विनाश कर दिया, और फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन के भी जो है 1000 भुजाएं काट डाली अपने फर्श से, हजार भुजाएं काट डाली और उसका सिर भी काट करके अलग कर दिया, और गाय को जो है ले आए, बेचारी गाय जो है बहुत दुखी थी, तो उसको जो है ले आए और जमदग्नि मुनि के आश्रम में बांधा। और जमदग्नि मुनि खुश नहीं हुए, बोले पुत्र तुमने अनुचित कार्य किया, हम ब्राह्मणों का ये कार्य नहीं है, हम ब्राह्मण को जो है सहन करके ही ब्राह्मण बनते हैं, तो तुमने तो उचित कार्य नहीं किया है, तो अब तुम्हें कृष्ण भावना भावित होकर के सब तीर्थों में तुम जो है दर्शन करो, स्नान करो। तो एक साल तक परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सब तीर्थों में स्नान किया और जो है कृष्ण का स्मरण किया और वापस आ गए। उस समय क्या था कि सहस्र बाबा अर्जुन के 10,000 पुत्र थे, कितने पुत्र थे 10,000 पुत्र थे, वो भाग गए थे अपनी जान बचा करके, परशुराम जी के आगे आने का मतलब है मौत, तो भाग गए थे। तो वो जो है अब परशुराम जी से बदला लेना चाहते हैं, है ना, तो ये सोच करके कि इन्होंने हमारे पिता की हत्या की है तो हम इनके पिता की हत्या करेंगे, कि परशुराम जी का तो कुछ कर नहीं सकते हैं और पिता जो है कैसे हैं, शांत ब्राह्मण हैं, तो उनका वध किया जा सकता है, क्योंकि जो विरोध ना करे, शांत हो, सहनशील हो, उसका वध किया जा सकता है। तो परशुराम जी जब ना हो तो इस ताक में जो है हमेशा रहते। जब परशुराम जी आश्रम से दूर गए हुए थे तो वो आ गए और जैसे कसाई जो है पशु का गला काट दे, ऐसे जमदग्नि का गला काट दिया और सिर लेकर के भी चले गए, क्योंकि सिर अगर रहेगा तो ये जीवित कर लेते हैं, ब्राह्मण लोग जो है इनके पास ऐसी शक्ति होती है कि कटे हुए सिर को भी जो है जोड़ करके किसी व्यक्ति को जीवित कर लेते हैं। तो सिर काट करके ले गए ताकि ये जीवित ना कर पाए जमदग्नि मुनि को। जब परशुराम जी आए आश्रम में और देखा कि पिता का सिर काट करके और ले भी गए, पिता का सिर भी ले गए, तब उन्होंने कहा कि अब जो है इन क्षत्रियों का विनाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा उत्पत्त हो गए हैं, उल्टे चल रहे हैं, है ना, और पूरी दुनिया को दिखाना भी पड़ेगा कि ब्राह्मण से द्रोह करने का क्या परिणाम होता है, और कैसे ब्राह्मण से द्रोह करने का, जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सहनशील शांत। तो फिर जो है परशुराम जी महेश मदीपुरी में जाकर के उन 10,000 जो सहस्र बाबा अर्जुन के पुत्र थे उनके सिर काट काट करके एक पहाड़ बना दे नगर के बीच में, उनके पूरा नगर देखे कि क्या परिणाम होता है, बड़ा भयानक दृश्य पैदा कर दिया। सोचिए 10,000 सिर का जो है एक ढेर, कितना बड़ा ढेर होगा एक पहाड़, 10,000 सिरों का, और उनके शरीर के जो है मतलब खून की एक नदी बहने लगी, एक खून की नदी बहाई और जो है उनके सिरों का एक ढेर बनाया, पर्वत बनाया, देखो इसका परिणाम क्या होता है ब्राह्मणों के साथ द्रोह करने का। और फिर छत्ती मतलब पूरी पृथ्वी में घूम घूम करके छत्ती राजाओं का संहार किया, 21 बार उन्होंने छत्ती राजाओं का संहार किया परशुराम जी ने। तो यहाँ पर ये मतलब बताया गया है कि नरकार्तिलिप्सु का मतलब है नरक में जाने से बचाया, इन्होंने उनका संहार करके क्या किया परशुराम जी ने, नरक में जाने से बचाया। तो ये भी एक सुरक्षा है, ये भी एक रक्षा का कार्य है, भगवान के अवतार रक्षा करते हैं। तो परशुराम जी जो है भगवान के अवतार हैं और शक्ति आवेश अवतार, तो उनके पास शक्ति है, भगवान की शक्ति का आवेश जब हो जाता है और जितने समय के लिए होता है उतने समय के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं, जब भगवान अपनी शक्ति खींच लेते हैं तो फिर वो सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं, फिर उनके पास वो शक्ति नहीं होती, तो ये शक्ति आवेश अवतार है। ठीक है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा है या मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, इनका प्रश्न है कि क्षत्रियों का विनाश करने वाले क्षत्रिय कैसे, क्षत्रियों का विनाश करते थे लेकिन फिर उनके बच्चे जो होते थे तो फिर उन बच्चों का जो है बच्चे जब बड़े हो जाते थे तो फिर दौरा लगता था उनका, फिर नष्ट करते थे, लेकिन फिर बाद में सब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि भाई ये तो जो है मतलब बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि क्षत्रियों का विनाश करके पूरी पृथ्वी को कश्यप मुनि को दान कर दी थी, कश्यप मुनि दान कर दी थी। तो फिर कश्यप मुनि ने परशुराम जी से कहा कि अब आप जो है मेरी पृथ्वी है, मेरी पृथ्वी है, तो मेरी पृथ्वी में आप मत रहिए। परशुराम जी से कहा कि अब पृथ्वी आपने मुझे दान की है ना, तो इस पृथ्वी में आप मेरी पृथ्वी में आप मत आइए। तो फिर वो महेंद्र पर्वत पर रहते हैं परशुराम जी। तो उनका ठीक है, अब जो है अब कुछ नहीं कर सकते। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी रहते हैं, और जब आते हैं कभी पृथ्वी में तो दो घड़ी से ज़्यादा ठहरते नहीं। दो घड़ी का मतलब 48 मिनट तक नहीं ठहरते हैं, 48 मिनट से ज़्यादा ठहरते नहीं किसी स्थान में। आकाश मार्ग से फिर जाते हैं, अगर पैदल चलेंगे तो पृथ्वी में 48 मिनट से ज़्यादा ठहरना पड़ेगा। तो किसी भी स्थान में आते हैं, आकाश मार्ग से आ जाते हैं, और कुछ जिससे बातचीत करना है बात करके, और फिर आकाश मार्ग से चले जाते हैं कि पृथ्वी में उन्होंने कहा कि मैं 48 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरूंगा, है ना। तो जब श्री राम को उन्होंने चुनौती दी, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि जब भगवान राम सीता से विवाह करके और बारात लेके आ रहे थे, तो उस समय परशुराम जी रास्ते में मिले और उन्होंने राम को जो है चुनौती दी कि तुम मुझसे युद्ध करो, है ना, ये शिव जी का धनुष था। इस तरह से जब चुनौती दी तो श्री राम ने जो है वो धनुष, वास्तव में विष्णु का ही धनुष था, श्री राम को कहा कि अगर तुम इसको चढ़ा लोगे तो फिर मैं तुमसे युद्ध करूँगा, है ना। तो श्री राम ने जो है धनुष को चढ़ाया है, और उन्होंने कहा कि अब जो मैंने धनुष चढ़ाया है इसमें बाण चढ़ गया है, अब ये जो है मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा कार्य जो है व्यर्थ नहीं होता। अगर मैंने धनुष खींच लिया और बाण जो है संधान कर लिया इसमें, तो अब मैं जो है और आपको अब मैं दंड दूंगा, और दो प्रकार के दंड में से कोई एक दंड आप चुन लीजिए, या तो मैं इस बाण के द्वारा आपकी आकाश गमन की शक्ति नष्ट कर दूं, और या फिर आपकी तपस्या नष्ट कर दूं, जितनी आपने तपस्या की वो नष्ट कर दूं। बोलो क्या चाहते हो। श्री राम का है जो है कार्य बिल्कुल निश्चित होता है, तो आप चुन लो कि आप दोनों कार्यों में से कौन सा आप दंड चाहते हो, दो प्रकार के दंड। तो परशुराम जी ने कहा कि नहीं नहीं राम, आप मेरी आकाश गमन की शक्ति नष्ट मत करिए, क्योंकि कश्यप जी को मैंने वचन दिया है कि उनकी पृथ्वी पर मैं दो घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहर सकता। आकाश गमन की शक्ति अगर आप नष्ट कर दोगे तो फिर मैं जो है पैदल चलूँगा, तो फिर मेरा वचन नष्ट हो जाएगा, है ना, इसलिए आप मेरी तपस्या को नष्ट कर दीजिए। तो श्री राम ने जो उनकी तपस्या नष्ट कर दी इस बाण के द्वारा, है ना। तो इस तरह से है ये सब बातें हैं। और कोई प्रश्न किसी का?
हाँ जी, तुलसी का प्रश्न था कि एक क्षत्रिय फिर कहाँ से आए वो, तो इसका कहीं मैंने पढ़ा है भागवतम में के उल्लेख, गोपाल जी ने कहा कि ब्राह्मणों से उन्होंने संतान, जो विधवाएँ थी उन्होंने ब्राह्मणों से संतान उत्पन्न की, फिर वो क्षत्रिय हुए।
हाँ, जैसे इक्ष्वाकु वंश का जब वर्णन आता है तो उसमें ये बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि ने जो है उस राजा की पत्नी में जो है गर्भाधान किया, और वो मूलक जो है फिर वो पुत्र जो उसका जन्म हुआ उसका नाम मूलक हुआ, तो भगवान राम के वंश में। तो ऐसी स्थिति जो है कभी कभी अगर हो जाए तो ये किया जाता है, लेकिन इस संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाता। और नारी कवच, एक बालक नारी कवच कहा गया कि उसको स्त्रियों ने मतलब घेर करके बचाया, जब परशुराम जी आए मारने के लिए तो स्त्रियों ने घेर लिया उस बच्चे को, तो उसकी रक्षा हो गई, तो उस बच्चे का नाम पड़ा नारी कवच, है ना। तो इस तरह परशुराम जी, तो वो तो है ही है कि आप जैसे पेड़ भी काट दें, पूरे जितने पेड़ हैं काट दें फिर से पैदा हो जाएंगे, है ना, उसी प्रकार से क्षत्रियों का वंश भी नष्ट नहीं होता है, भगवान कारण है, हर चीज़ के कारण है। हाँ जी,
एक प्रश्न ये कि कर्ण को उन्होंने शस्त्र दे दिया परशुराम जी, तो 48 मिनट कैसे?
कर्ण को अस्त्र विद्या सिखाई थी, तो कर्ण गया था महेंद्र पर्वत पर किया था कर्म। और कोई प्रश्न?
तो
हाँ, कार्तवीर अर्जुन और सहस्त्र बाहू, कार्तवीर का मतलब कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर ही कहलाता है, कृतवीर उसके पिता थे, कृतवीर का पुत्र कार्तवीर कहलाता है। ठीक है
जी, इसमें लिखा है महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के तेजन से शुरू
भारत से प्रवास हुए। हाँ ये जो है, हाँ कुछ राजा जो है भाग गए, तो भारत छोड़ करके भाग गए, तो मिस्र में भी वो बसे। तो ये प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो फिर इसमें देखा जा सकता है, प्रभुपाद जो बता रहे हैं तो मैंने सब ये देखा नहीं, लेकिन इसको भी अध्ययन किया जा सकता है। और कोई प्रश्न? हाँ, जब भीष्म जी ने जो है परशुराम जी से युद्ध किया था, तो उस समय नहीं, महेंद्र पर्वत से आए थे वो, महेंद्र पर्वत से आए थे वे, और भीष्म को जब उन्होंने मतलब कहा कि या तो मेरे आदेश का पालन करो नहीं तो तुम मुझसे युद्ध करो, तो भीष्म जी ने कहा कि मैं फिर आपसे युद्ध करूँगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, तो मैं आपसे युद्ध करूँगा। तो परशुराम जी ने जो है जब भीष्म जी से युद्ध किया, तो उस समय उन्होंने अपने मन के द्वारा ही एक रथ तैयार कर दिया, अपने मन के द्वारा ही रथ तैयार कर दिया। कितना बड़ा रथ था वो? एक योजन लंबा चौड़ा था, एक योजन का मतलब 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा रथ तैयार कर दिया। और वो रथ जो है उनकी इच्छा के अनुसार चलता था, कोई सारथी नहीं था, वो रथ जो है उनकी इच्छा के अनुसार चलता था, उसका कोई सारथी नहीं था, मन से उन्होंने पैदा कर दिया। तो रथ के ऊपर थे तो भी वो जमीन पर नहीं माने जाएंगे, कुछ इसी तरह की बात है इसमें। 27 दिन तक युद्ध हुआ परशुराम जी का भीष्म जी के साथ, अंत में फिर परशुराम जी पराजित हुए। और जब पराजित हुए तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय लोग मुझसे ही जो है सीखते हैं और मुझे पराजित करते हैं, आगे क्षत्रियों को नहीं शिक्षा दूंगा मैं। तो फिर कर्ण ने जो है अपना मतलब अपना परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, कर्ण ने जब परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसको शिक्षा दी, युद्ध विद्या की शिक्षा दी, ब्रह्मास्त्र भी सिखा दिया। तो एक बार परशुराम जी उसके गोद में सिर लेकर रख करके सो रहे थे, तो कर्ण जो है एक कीड़ा जो है जांग में बैठा हुआ था, और कर्ण ने जो है परशुराम जी के सिर को अपने हाथों के नीचे रखा था, क्योंकि उसकी गोद में अगर परशुराम जी सिर रखें तो पैरों से गुरु के सिर का स्पर्श होगा, तो अपने गोद में रखा था लेकिन सिर के नीचे अपने दोनों हाथ लगा लिए थे। अब कीड़ा जो है जांग में बैठा उसको काट रहा है, तो कर्ण ने सोचा कि गुरु की सेवा में तो बाधा पड़ेगी अगर मैं हाथ से कीड़े को हटाऊंगा, तो दोनों हाथ सिर के नीचे हैं, है? अगर हाथ हटाऊंगा तो उनका सिर भी हिल सकता है या पैरों से स्पर्श हो जाएगा उनके सिर का, तो दोनों बातें हैं, मतलब वो अपने हाथ अगर हटाएंगे तो पैरों से भी तो उनका सिर स्पर्श होगा ना, तो उसने अपने हाथ नहीं हटाए और कीड़ा काटता रहा और इतना काटा कि खून से भर गया उस उनकी गोद, और परशुराम जी कानों में भी खून खून हुआ, तो भर गई खून से। तो जब परशुराम जी आँख खुली तो बोले, अरे ये क्या? तो उसने बताया करने कि आपकी सेवा में जो है मेरे दोनों हाथ लगे थे, इसलिए मैंने कीड़े को नहीं हटाया। तो परशुराम जी इस बात से तो प्रभावित हुए कि मतलब गुरु की सेवा की क्या भावना है, लेकिन साथ गुरु का तुमने अपराध किया है, तुमने गुरु को धोखा दिया कि अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में दिया, ब्राह्मण तो तुम हो नहीं सकते, देखो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला तुम ब्राह्मण कैसे हो, ब्राह्मण ये इतना कष्ट नहीं सहन कर सकता है, क्षत्रिय हो तुम, तो क्षत्रिय हो, है ना, तुमने अपना जो है गलत परिचय दिया, तुमने धोखा दिया तुमने, तो जो मैंने तुम्हें विद्या सिखाई ब्रह्मास्त्र की वो भी तुमको धोखा देगी, तुमको याद नहीं आएगा, जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय तुमको याद नहीं आएगा ब्रह्मास्त्र, देखो ये हाथ। तो इस तरह से हमें जो है विचार करना चाहिए कि अगर हम जो है धोखा देकर के कुछ फायदा उठाना चाहते हैं किसी के द्वारा, है ना, तो वो चीज भी हमको धोखा देगी, ये भी है। जान बुझ के ही किया ना उसने अपना परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर मैं क्षत्रिय के रूप में अपना परिचय दूंगा तो ये मुझे नहीं सिखाएंगे, जो देवीदा नहीं सिखाएंगे, उसने ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दिया, तो जान बुझ के किया ना।
तो कर्ण को मालूम था कि वो क्षत्रिय
है? हाँ, कर्ण को पता था कि वह क्षत्रिय है, और वो उसको अंग देश का राजा भी बनाया था दुर्योधन ने, राज्य भी दिया था, और इसने युद्ध विद्या पहले से सीखी थी, युद्ध विद्या कर्ण ने भी, विशेष रूप ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए परशुराम जी के पास आया था। तो इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि हम धोखा देकर कोई चीज़ अगर पाना चाहेंगे तो उसे लाभ नहीं होगा, हमें भी धोखा मिलेगा। तो जिस समय अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मास्त्र को याद नहीं आ रहा था ये भी है, कई शिक्षाएं इस तरह से मिलती हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो परशुराम जी ने जो है 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन 22 बार क्यों नहीं किया? 21 बार किया, 22 बार क्यों नहीं किया? क्या कारण बन गया? कश्यप मुनि ने मना कर दिया, मना किया। आप पृथ्वी, आपने पृथ्वी दान किए, आप मेरी पृथ्वी है, आप मेरी पृथ्वी में नहीं आना मेरी पृथ्वी में आप नहीं आ सकते हैं। और आओ तो कितनी देर के लिए आओ? दो घड़ी, दो घड़ी से ज़्यादा पृथ्वी में ठहरना नहीं है ना। तो जब श्री राम ने जो है उनकी चुनौती स्वीकार की और धनुष को चढ़ाया है ना, तो फिर श्री राम ने परशुराम जी से क्या कहा कि मैंने जो धनुष चलाया है अब क्या करूँगा? अब छोड़ूंगा बाण, अब बाण छोड़ूंगा, अब ये बाण जो है मेरा धनुष में चढ़ गया तो अब वैसे नहीं उतरेगा, क्या करूँगा? छोड़ूंगा, हैं, और आपको दंड भी दूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ चुनौती, मुझको चुनौती दी ना युद्ध करने की, तो आपको दंड भी दूंगा। तो क्या दंड दूंगा? दो प्रकार में से एक प्रकार का दंड आपको दूंगा, और आपका चुनाव, चुनाव करो कि दोनों में से कौन सा दंड, दो दंड कौन से हैं? पहला क्या? आकाश गमन करने की शक्ति नष्ट कर दूं, या तो, या दूसरा आपकी तपस्या नष्ट कर दूं। तो कौन सा चाहते हो? दो प्रकार के दंड में से कौन सा चाहते हो? आजीवन कारावास चाहते हो या फांसी? या तो फांसी दूं या आजीवन कारावास दूं, क्या चाहते हो? तो उन्होंने क्या कहा? तपस्या नष्ट कर दीजिए, मैं तपस्या नष्ट कर दीजिए, तपस्या मैं और कर लूंगा लेकिन आकाश गमन करने की शक्ति नष्ट नहीं करना। क्यों? आकाश मार्ग से ही जाता हूं मैं, महेंद्र पर्वत से आता जाता हूं, आकाश मार्ग ही आता जाता हूं।
जी एक जगह बताया गया थी कि महेंद्र पर्वत कहीं उड़ीसा के आसपास है, कुछ लोग कहीं
दक्षिण भारत में,
हाँ दक्षिण भारत में
महेंद्र पर्वत
से आगे
दक्षिण भारत में
आंध्र,
आंध्र प्रदेश में होगा, देखना पड़ेगा। महेंद्र पर्वत तो मिल जाएगा, ऐसे तो इसी नाम से या किसी नाम से तो होगा ही। परशुराम जी हैं और नित्यानंद प्रभु भी गए थे, उन्होंने दर्शन किया, कई मतलब लोगों का मतलब उन्होंने दर्शन किया। परशुराम जी हैं वहाँ महेंद्र पर्वत, चेतन चेतन महेंद्र पर्वत है, अभी भी है रेणु का तीर्थ, तो अलग ही होगा कहीं जमदग्नि मुनि का आश्रम जहाँ हो, जहाँ भी था अलग ही। ठीक है, धन्यवाद। गिरंदराज श्रीमान भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा मंदिर
जय,
श्रीनाथ चित्तल प्रभु की
जय।